ये हफ्तावार बाइबल का दर्सी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है जो न्यू जर्सी अमरीका में वाक़ है। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 23 फरवरी 2020 बरोज इतवार हफ्ता के अख्ताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मजमून अकल, सुनहरी मतन जबूर। वो जो कौमों को तंबीह करता और इंसान को दानिश सिखाता है। जवाबी मुतालिया खरूज इमसाल। खुदावन तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं हूं। मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्तरों के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकदसों की राह को महफूज रखे। दरसीवाज बाइबल में से मलाकी। तुम पर जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाओ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे, और तुम शरीरों को पामाल करोगे, क्योंकि उस रोज वो तुम्हारे पांव तले की राख होंगे। रबुल अफवाज फरमाता है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फ़राइज़ व अहकाम को जो मैंने हुरैब में तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। सैमुएल। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद और उसके लोग तीसरे दिन सकलाज में पहुंचे, तो देखा कि अमालिकियों ने जनूबी हिस्सा और सिकलाक पर चढ़ाई करके सिकलाक को मारा और आग से फूंक दिया, और औरतों को और जितने छोटे बड़े वहां थे सबको असीर कर लिया है। उन्होंने किसी को कत्ल नहीं किया बल्कि उनको लेकर चल दिए थे। सो जब दाऊद और उसके लोग शहर में पहुंचे, तो देखा कि शहर आग से जला पड़ा है और उनकी बीवियां और बेटे और बेटियां असीर हो गई हैं। तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहां तक कि उनमें रोने की ताकत न रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यजरीली अजनयम और कर्मली नबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थी, और दाऊद बड़े शिकंजा में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए नहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावंद अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया, और दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि अगर मैं उस फौज का पीछा करूं तो क्या मैं उनको जा लूंगा। उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू यकीनन उनको जा लेगा और जरूर सब कुछ छुड़ा लाएगा। सो दाऊद और वो 600 आदमी जो उसके साथ थे चले और बसूर की नदी पर पहुंचे। वो लोग जो पीछे छूट गए ठहरे रहे, पर दाऊद और 400 आदमी पीछा किए चले गए, और उनको मैदान में एक मिस्री मिल गया। उसे वो दाऊद के पास ले आए और उसे रोटी दी, सो उसने खाई और उसे पीने को पानी दिया। दाऊद ने उससे कहा, क्या तू मुझे उस फौज तक पहुंचा देगा? जब उसने उसे वहां पहुंचा दिया, तो देखा कि वो लोग उस सारी जमीन पर फैले हुए थे और खाते पीते और ज़ियाफ़तें उड़ा रहे थे। सो दाऊद रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की शाम तक उनको मारता रहा, और दाऊद ने सब कुछ जो अमालिकी ले गए थे छुड़ा लिया, और अपनी दोनों बीवियों को भी दाऊद ने छुड़ाया, और उनकी कोई चीज़ गुम ना हुई, ना छोटी ना बड़ी, ना लड़के ना लड़कियाँ, ना लूट का माल, ना और कोई चीज़ जो उन्होंने ली थी। दाऊद सब का सब लौटा लाया। लूका। फिर यीशु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा, और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके यहाँ तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए, और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। लूका। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौओं पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनका खित्ता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मुलब्बस न था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इतकादु तुमको क्यों ना पहनाएगा। और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, और ना शक्की बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं, लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। यूहन्ना। बस यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवाय उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है और जितने काम खुद करता है उसे दिखाता है, बल्कि इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम ताज्जुब करो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। यूहन्ना। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए तो यीशु हैकल में जाकर तालीम देने लगा। बस यहूदियों ने ताज्जुब करके कहा कि इसको बगैर पढ़े क्यों कर इलम आ गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। याकूब। जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है। इमसाल। ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। सारे दिल से खुदा उन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया न कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दर्सी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा अजीम मैं हूं, सब जानने वाला, सब देखने वाला, सब अमल करने वाला, अक्ल कुल, कुली मोहब्बत और अबदी, असूल, जान, रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, सारा मवाद, जहानत। अकल, वहद मैं या हम, वहद रूह, हस्ती, इलाही असूल, असल, जिंदगी, हक, मोहब्बत, खुदाए वाहद, वो नहीं जो इंसान में है बल्कि इलाही असूल या खुदा, इंसान जिसका मुकम्मल और कामिल इजहार है, अलूहियत जो वाजह करती है मगर वाजह होती नहीं। इलाही अकल में मुकर्रर करदा हर असर को काबू में करते हुए और सारी वजह को पहचानते हुए दुनिया का हकीकी इख्तियार अकल में है। अकल अकेली तमाम लियाकतों, शाऊर और फहम की मलकियत रखती है, इसलिए जहनी सलाहियतें तंजीम साजी और वसीदगी के रहम करम पर नहीं होती, वगरना उसके कीड़े ही इंसान को बेरूप बना दें। एक क्रिश्चियन साइंसदान की दवा अकल है, यानी वो इलाही सच्चाई जो इंसान को आजाद करती है। एक क्रिश्चियन साइंसदान मादी हिफ्जाने सेहत की तजवीज कभी नहीं देता, कभी इसके साथ साजवाज नहीं करता। अकल शिफा दे सकती है बशर्ते कि ये अकल इलाही हो ना कि इंसानी। अकल तमाम तर दीगर कुवतों से मावरा है और बिलाखिर शिफा में दूसरे तमाम तर वसाइल पर फौकियत हासिल करेगी। साइंस के वसीला शिफा देने के लिए आपको साइंस के रूहानी और इखलाकी मुतालबात से लाइलम नहीं होना चाहिए और उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। इखलाकी जहालत या गुनाह आपके इजहार को मुतासर करते हैं اور کرسچن سائنس کے معیارات کی رسائی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ خدا ہماری ضرورت کو جانتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے یا ہمارے ساتھیوں کو اس سے متعلق بتائیں۔ اگر ہم ایمانداری اور خاموشی اور حلیمی کے ساتھ یہ خواہش رکھتے ہیں تو خدا ہمیں یہ نعمت عطا کرے گا اور ہم ہماری حقیقی خواہشات کو الفاظ کے طوفان کے ساتھ بھاری خطرے سے نکال پائیں گے۔ خدا انسان سے متاثر نہیں ہوتا۔ الہی کان ایک سمعی اعصاب نہیں ہے، یہ سب کچھ سننے والی اور سب کچھ جاننے والی عقل ہے جو انسان کی ہر ضرورت کو ہمیشہ جانتی ہے اور جس کے وسیلہ سے یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ باپ جو پوشیدگی میں ہے جسمانی حواس کے لیے ندیدہ ہے، لیکن وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ الفاظ کے مطابق نہیں بلکہ مقاصد کے مطابق اجر دیتا ہے۔ دعا کے دل میں داخل ہونے کے لیے غلطی والے حواس کے دروازے کا بند ہونا ضروری ہے۔ ہونٹ خاموش اور مادیت پسندی ساکت ہونی چاہیے تاکہ انسان کے سامعین روح الہی اصول اور اس محبت سے بھرپور ہونے چاہیے جو غلطی کو تباہ کرتی ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل کو جاننا ازلی الہی عقل اور اس عقل سے تعلق رکھنے والے خیال کا خاص حق ہے۔ ہستی کی سائنس سے آگاہی ہمیں مزید وسیع پیمانے پر الہی عقل کے ساتھ مکالمہ کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ ان واقعات کی پیشن گوئی اور پیش بینی کی جائے جو کائنات کی فلاح سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ الہی لحاظ سے متاثر ہوا جا سکے اور البتہ آزاد عقل کی وسعت کو چھوا جا سکے۔ یہ سمجھنا کہ عقل لامحدود ہے، مادیت میں جکڑی نہیں، بصیرت اور سماعت کے لیے آنکھ اور کان کی محتاج نہیں، نہ ہی قوت حرکت کے پٹھوں اور ہڈیوں پر انحصار کرتی ہے، عقل کی اس سائنس کی جانب ایک قدم ہے جس کی بدولت ہم انسان کی فطرت اور وجود سے متعلق آگاہی پاتے ہیں۔ جب ہم صبر کے ساتھ خدا کا انتظار کرتے اور راستبازی کے ساتھ سچائی کی تلاش کرتے ہیں تو وہ ہماری راہ میں رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی کے مطالبات روحانی ہیں اور وہ بدن تک عقل کے وسیلہ پہنچتے ہیں۔ انسانی ضروریات کے بہترین ترجمان نے کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پہنیں گے۔ اگر بیماری کو روکنے کے لیے مادی قوانین ہے تو پھر بیماری کا سبب کیا بنتا ہے؟ الہی قانون نہیں، کیونکہ جسمانیت کی مخالفت میں، نہ کہ تابع داری میں، یسوع نے بیمار کو شفا دی اور غلطی کو باہر نکالا۔ کائنات بشمول انسان پر عقل کی حکمرانی ایک کھلا سوال نہیں رہا بلکہ یہ قابل ثبات سائنس ہے۔ یسوع نے بیماری اور گناہ سے شفا دیتے ہوئے اور موت کی بنیاد کو تباہ کرتے ہوئے الہی اصول اور لافانی عقل کی طاقت کو بیان کیا۔ انسانیت سائنس اور مسیحت کے وسیلہ فروغ پائے گی۔ دوڑ کو تیز کرنے کی ضرورت اس حقیقت کا باب ہے کہ عقل یہ کر سکتی ہے، کیونکہ عقل آلودگی کی بجائے پاکیزگی، کمزوری کی بجائے طاقت اور بیماری کی بجائے صحت مندی بخش سکتی ہے۔ یہ پورے نظام میں قابل تبدیل ہے اور اسے ہر ذرے تک بنا سکتی ہے۔ کوئی کہتا ہے، میں اپنے بدن کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ یہ کرنے کے لیے بدن پر الہی عقل کا پاکیزہ اور بلند تاثر ہونا لازمی ہے، اور کرسچن سائنسدان اپنے بدن کی خوب حفاظت کرتا ہے جب وہ اسے زیادہ تر اپنے سوچ سے باہر رکھتا ہے، اور پولوس رسول کی مانند بدن کے وطن سے جدا ہو کر خداوند کے وطن میں رہنا منظور کرتا ہے۔ عقل تمام تر حرکات کا منبع ہے، اور اس کے متواتر اور ہم آہنگ عمل کو پرکھنے یا اس پر مزاحمت کرنے والی کسی قسم کی سستی نہیں پائی جاتی۔ عقل کل، آج اور ابد تک زندگی، محبت اور حکمت کے ساتھ یکساں ہیں۔ مادہ اور اس کے اثرات گناہ، بیماری اور موت فانی عقل کی حالتیں ہیں جو عمل کرتی، رد عمل کرتی اور پھر اختتام کو پہنچتی ہیں۔ وہ عقل کی حقیقتیں نہیں ہیں، وہ خیالات نہیں بلکہ بھرم ہیں، اصول ہی مطلق ہے۔ یہ غلطی سے تسلیم نہیں ہوتا بلکہ فہم پر تکیہ کرتا ہے۔ جب ہم الہی کے ساتھ اپنے رشتے کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں تو ہم کوئی اور عقل نہیں رکھتے ماں سوائے اس عقل کے، کوئی اور محبت، حکمت یا سچائی نہیں رکھتے، زندگی کا کوئی اور فہم نہیں رکھتے، اور مادے یا غلطی کی وجودیت کا کوئی اور شعور نہیں رکھتے۔ इस बात की पूरी तरह से समझ आ जानी चाहिए कि तमाम इंसानों की अकल एक है, एक खुदा और बाप, एक जिंदगी, हक और मोहब्बत है। जब यह हकीकत एक तनासुब में आया होगी तो इंसान कामल हो जाएगा, जंग खत्म हो जाएगी और इंसान का हकीकी भाईचारा कायम हो जाएगा। दूसरे देवता ना होना, दूसरों की तरफ जाने की बजाय रहनुमाई के लिए एक कामल अकल के पास जाते हुए इंसान खुदा की मानद पाक और अब्दी हो जाता है, जिसके पास वही अकल है जो मसीह में भी थी। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फ्राइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि वो हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुना मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज जाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरी आसाइशों की अकासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना जहनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।